तो महाराज जी 1981 में इस्कॉन से जुड़े, उसमें वो विद्यार्थी थे। और 1986 में महाराज जी ने श्री राधा गोविंद महाराज जी से दीक्षा लिया, और उसके बाद फिर 1989 में वो ब्रह्मचारी आश्रम में जुड़े, और उसके बाद बहुत विशेष प्रचार किए चारों तरफ भारत में, विशेष रूप से विभिन्न बिहार के गांवों में। और अभी भी महाराज जी चारों तरफ बहुत प्रख्यात प्रचारक के रूप में भागवत का प्रचार कर रहे हैं। 2020 गौर पूर्णिमा में महाराज जी ने संन्यास लिया, और उसके बाद चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी हमारे साथ में हैं और हमें यहाँ पर अपना संग दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं महाराज जी और अधिक हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे बीच बीच में आकर। तो आइए फिर से हम महाराज जी का यहाँ पे अभिनंदन करते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम पूज्य अनंत कृष्ण दास गोस्वामी महाराज की जय।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनाचारी यमुना तीरा बनाचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बाला भा गिरवार धारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनाचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी तुम ज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के नमाचार श्रीदास ठाकुर के इताई गौर हरि प्रेमानंदे जय समवेत भक्त वृंद के जय श्री गुरु गौरंग की ताई गौर प्रेमानंदे
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 अध्याय 13 श्लोक संख्या 14 इस अध्याय का शीर्षक है श्रीमद् भागवतम की महिमा। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरं राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतं गणे यावद् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरम्। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतं गणे यावद् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरम्। राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतं गणे यावद् भागवतं नैव श्रूयते अमृतसागरम्। शब्दार्थ राजन्ते चमकते हैं तावत् तब तक अन्यानि अन्य पुराणानि पुराण शतां साधु पुरुषों की गणे सभा में यावत् जब तक भागवतम श्रीमद् भागवतम को न नहीं एव निसंदेह श्रूयते सुना जाता है अमृत सागरम अमृत का सागर। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को सुना नहीं गया हो। इसका अनुवाद तात्पर्य तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा किया गया है। प्रभुपाद जी के ही अनुगत में निर्देशन में उनके शिष्य गोपी प्राण धन प्रभु और कौन किए हैं हृदयानंद गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य और संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो उनके प्रति हम अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने भूल कर उनका नाम नहीं लिया। तो प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य गोपी प्राण धन प्रभु हृदयानंद गोस्वामी महाराज के द्वारा इस अनुवाद किया गया है। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को सुना नहीं गया हो। तात्पर्य अन्य वैदिक ग्रंथ तथा संसार के अन्य शास्त्र तब तक प्रधान बने रहते हैं जब तक श्रीमद् भागवतम को भली भांति सुना और समझा नहीं जाता। श्रीमद् भागवतम अमृत का सागर है और सर्वोच्च ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम के श्रद्धापूर्ण श्रवण वाचन तथा वितरण से संसार पावन बन जाएगा और अन्य छोटे छोटे ग्रंथ फीके पड़कर निचले स्तर पर चले जाएंगे। तो इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ग्रंथों का सार शिरोमणि है और श्रीमद् भागवतम की महिमा तो सुखदेव गोस्वामी, श्रील व्यास देव, बड़े बड़े जो प्रवृत्ति भी हैं उन्होंने अपने मुखारबिंद से सदियों से करते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो सूर्य के समान चमकता है और कली कलमश से उत्पन्न अंधकार को, अज्ञान को निरस्त करने में बहुत ही प्रभावशाली है। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिकता है, सूर्योदय से पहले ही अंधेरा भाग जाता है। प्राची क्षितिज पर सूर्य के आने से पहले अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही श्रीमद् भागवतम की सुनने की अगर कोई इच्छा भी जागृत करता है तभी श्री कृष्ण उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, मतलब उसका हृदय अज्ञान से कलमश से मुक्त हो जाता है, उसका हृदय श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त आसन के योग्य बन जाता है। जैसे ही वो श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा करता है, सुनना तो आगे की बात है, सुनने की इच्छा से ही श्री कृष्ण उसके हृदय में सद्यो हृदय वरुद्ध अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है उसको कितना भी कहा जाए कम है। श्रीमद् भागवतम को दर्शन करने से, दर्शन मज्जन पान, जैसे गंगा का दर्शन करने से और गंगा के जल का पान करने से और स्नान करने से त्रय ताप का उन्मूलन हो जाता है, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, वैसे ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण वाचन कीर्तन करने से, दर्शन करने से भी त्रापो तयोन उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमुवा परे ऋश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृते भी, और इसके ऊपर है, ऊपर की लाइन में है कि श्रीमद् भागवतम का पठन श्रवण कीर्तन करने से त्रय ताप समूल नष्ट हो जाता है। ऊपर कलाइन कैसे है, धर्म प्रोजित कैत्र अत्र परमो निर्म शराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। शिवदम कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है, तापोत्रयन उन्मूलनम जड़ सहित नष्ट कर देता है त्रेताप को, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, संसार दवानल है, सभी लोग इसमें तप रहे हैं, ऐसे तप्त जीवन के लिए अमृत है श्रीमद् भागवतम। जो भी संसार में तो हर लोग तप रहे हैं, त्रय ताप, तीन ताप से सभी लोग तापित हैं, तो ऐसे तप्त जीवन के लिए श्रीमद् भागवतम अमृत के समान है। और ऐसा अमृत का संग्रह है कि सागर के तरह है, महासागर, जैसे सागर से कितना भी जल लीजिए कम नहीं होता है, बल्कि कभी कभी बढ़ जाता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है रस का सागर है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति अमृत का सागर है। इसलिए इसको जो लोग भी इसके संपर्क में आते हैं संसार दावानल से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमुवा परेरि सद्यो हृदय, और सुनने की इच्छा करने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में आ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की बहुत महिमा है। जहां श्रीमद् भागवतम कहा जाता है, सुना जाता है, जहां इसका वितरण किया जाता है तो जगत पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा पवित्र कारक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के पठन पाठन पर, श्रवण पर और वितरण पर भी जोड़ दिया गया, इसका वितरण करना चाहिए। पीछे का श्लोक में तो आप लोग सुने ही हैं, श्रीमद् भागवतम का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने प्रतिदिन प्रातः काल में श्रीमद् भागवतम को रखा है और शाम को भगवद गीता। तो दो ऐसे ग्रंथ हैं जो कली कलमश को मूल से ही समूल नष्ट कर देते हैं। कभी कभी पेड़ जल जाता है लेकिन जड़ जीवित रहता है, तो वर्षा ऋतु आने में फिर से आ जाता है। जैसे बांस के झुरमुट होते हैं, आग लगने पर जल जाते हैं लेकिन उसका जड़ जो है जीवित रहता है, फिर वर्षा ऋतु में आ जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है समूल जड़ सहित नष्ट कर देता है त्रेताप को, उन्मूलनम, मूल सहित खत्म कर देता है। तो श्रीमद् भागवतम के ऊपर इस अध्याय में की महिमा का उल्लेख है कि श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसका अनुमोदन करना चाहिए। वैसे ही जैसे गंगा का कोई जल दूसरे पर छिड़कता है तो जिस पर पड़ता है वो भी पवित्र हो जाता है, और जो छिड़कता है वो भी पवित्र होता है, और जो उसका अनुमोदन करता है वो भी पवित्र होता है। अनुमोदन करने से भी, इसको करने की सुविधा करना, इसके लिए पैसा खर्च करना, इसके वितरण के लिए व्यवस्था करना, तो सामान्य रूप से तीनों लोग लाभान्वित होते हैं। अगर मान लीजिए कोई श्रीमद् भागवतम श्रवण नहीं करे लेकिन उसकी व्यवस्था दे दिया या प्रचार करने के लिए सुविधा दे दिया तो वो भी लाभान्वित होता है। यहाँ तक कि दर्शन से भी, बहुत लोग घरों में भागवतम को रखते हैं, रखने से भी वो घर मंदिर हो जाता है। श्रीमद् भागवतम भगवान का शाब्दिक अर्चा विग्रह है, शब्द स्वरूप में भगवान निवास करते हैं, वाङ्मय श्री विग्रह है। भागवत को कोई घर में रखता है, उसका आरती पूजन करता है तो उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। बहुत महिमा है भागवतम के विषय में, इसलिए प्राचीन काल से लोग भागवतम को घरों में लोग रखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं वो भी धूप दीप दिखाते हैं। गांव में हम लोग की दादी थी तो रामायण को रखती थी, किसी को देती नहीं थी पढ़ने के लिए वो रखने की महिमा जानती थी, कोई पढ़ने के लिए गया तो व्याकुल हो जाती थी बहुत अच्छा तरह से कपड़े में बांध कर रखती थी, अगरबत्ती दिखाती थी। तो ऐसा महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के गांव में लोग भगवत गीता, भागवत जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो लोग भी रखते हैं, करते हैं। एक बुढ़िया थी, संकीर्तन बस गई थी तो भगवत गीता खरीदी, तो जब पढ़ती है बोलने में पढ़ती नहीं हूं तो क्यों ले रही हो, तो बोली कि इसके लेने के लिए मैं कई साल से पैसा जमा करती थी, गरीब थी तो एक एक रुपया दो दो रुपया कई सालों में जमा करके तो 100 रुपया इकट्ठा की थी लेने के लिए, और क्यों के रखने के लिए, देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए। बहुत आस्था है महाराष्ट्र में, भगवद गीता के प्रति लोगों का बहुत रुझान है महाराष्ट्र में, लोग रखते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी, और जो पढ़े हैं अगर एक बार भी पढ़ लेता है भगवद गीता, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, एक बार भी गंगा का एक कणिका भी अगर पी लेता है कोई, और थोड़ा भी किंचित धीता, थोड़ा भी भगवद गीता पढ़ लिया है, और एक बार भी भगवान को नमस्कार कर लिया है, उनकी अर्चना कर लिया है, एको पिकृष समर्चिता यश मह किम कुरते चर्चा, फिर यमराज उसकी चर्चा नहीं करते हैं। एक भी, एक बूंद भी गंगा का जल पी लेता है, एक श्लोक भी पढ़ लेता है, किंचित, किंचित मैंने बहुत थोड़ा, भगवत गीता किंचित गीता आदि शंकराचार्य लिखते हैं। तो फिर यश यम किम पूर्ते चर्चा, यमराज को हिम्मत नहीं होता है उसकी चर्चा करने के लिए, यमराज के जुरिस्डिक्शन से वो परे हो जाता है। तो भागवत भगवान का स्वरूप है, इसको इसकी महिमा बहुत है। जब तक जीवन है तब तक सुनना चाहिए। तो परम पूज्य राधाकृष्ण महाराज व्याख्या करते, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव सन्नितम पिबत भागवतम रसमालयम आलयम। तो कह रहे थे जब तक शरीर का लय न हो जाए, व्याख्या कर रहे थे, तब तक इसको पीना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक पीते रहना चाहिए, पीबत। इस श्लोक में राजन्ते तावत अन्यानि पुराणानि शताम गणे, साधु भक्त समाज में अन्य पुराण तब तक चमकते हैं जब तक श्रीमद् भागवतम की कथा पठन पाठन न हो। अन्य पुराण भी हैं लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है सूरज की तरह है, अन्य पुराण जो है तारे की तरह हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम जब कोई पढ़ने लगता है, अन्य पुराण जो है उसके गण, उसके भागवतम के तुलना में तारे जैसे टिमटिमाते हैं। श्रीमद् भागवतम तो पूरा चमकता है, तो उसके सामने अंधेरा रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। राजन्ते तावत अन्यानि, राजन्ते माने चमकते हैं, तावत अन्यानि पुराणानि, अन्य पुराण साधु समाज में तभी तक बने रहते हैं जब तक श्रीमद् भागवत, तावत भागवतम नहीं हुआ, जब तक भागवतम को कोई सुना न हो। जब भागवतम कोई सुनना प्रारंभ कर देता है तो अन्य पुराण फीके लगते हैं, नगण्य महसूस होते हैं। जैसे सूर्य है तो वहां दीपक कोई जलाए तो दीपक नगण्य है, दीपक का कोई महत्व नहीं है। दिन में दीपक क्या जलाना है? तो श्रीमद् भागवतम के आगे अन्य पुराणों की क्या गरिमा है, क्या महिमा है? नगण्य है, जैसे सूरज के सामने दीपक। दिन में कोई दीपक नहीं जलाता है, बिजली भी प्रायः लोग बंद कर देते हैं। जैसे भूखा व्यक्ति है, बहुत भूखा है और उसको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए और उसके बाद अगर कोई उसको तुच्छ भोज पदार्थ दे तो अच्छा है। उसी तरह अगर कोई श्रीमद् भागवतम सुन लिया है उसके बाद अन्य पुराण वैसे ही लगते हैं। जैसे भूखा व्यक्ति को 56 भोग मिल जाए और 56 भोग खाने के बाद कोई सत्तु दिखाने के तो नहीं पसंद करेगा, वैसे श्रीमद् भागवतम दिन में यथा दीपो दिवा पीछ। एक नीति शास्त्र में श्लोक है कि वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवा पीच। से समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, समुद्र में तो ऐसे ही पानी है। वृथा वृष्टि समुद्रेशु वृथा तृप्तस्य भोजनम, अतृप्त व्यक्ति के लिए भोजन, खा लिया है आकंठ भोजन कर लिया है, तृप्तस्य भोजन वृथा तृप्तस्य भोजनम। वृथा दानम समर्थस्य, समर्थ व्यक्ति को दान देना, कोई बहुत धनी है अरबपति है उसको बोले 100 रुपया को दान देता हूं तो उसका अपमान होगा, कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है तो बोलेंगे कि रखिए आपके लिए मैं दान देता हूं, तो 100 रुपया या 500 1000 उसके लिए अपमान है। है कि नहीं? बहुत समर्थ व्यक्ति के लिए दान देना उसका अपमान होगा। उसी तरह श्रीमद् भागवतम के समक्ष अन्य पुराणों अन्य शास्त्रों को सुनना उसका अनुमोदन करना श्रीमद् भागवतम के सामने वो नगण्य है, वो तुच्छ है। राजन्ते तावत् अन्यानि पुराणानि शतामगणि तावत् भागवतम नैव श्रूयते अमृत सागरम। जो अमृत का सागर है तो सागर कभी सूखता नहीं है। अन्य नदी हैं, सरोवर हैं, सूख जाते हैं ग्रीष्म काल में, तो अन्य जो पुराण है उनका प्रभाव हो सकता है कि खत्म हो जाए, लेकिन कली युग में श्रीमद् भागवतम जो है गर्जना कर रहा है। कली युग के ताप को पाप को दूर करने के लिए गर्जना कर रहा है। जैसे शेर जंगल में जब गर्जना करता है तो अन्य जानवर भाग जाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम के गर्जना में पाप रूपी जो अन्य जंतु हैं भाग जाते हैं। अन्य सारे पुराण तब तक संत भक्तों की सभा में चमकते हैं जब तक अमृत के महासागर श्रीमद् भागवतम को सुना नहीं गया हो। अन्य पुराण की भी बहुत महिमा है, लोग सुनते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया या श्रीमद् भागवतम सुनने लगा तो फिर उसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में ही हो जाती है। फिर उसको वो अन्य पुराण जो है इसके सामने तारे जैसे लगते हैं, दीपक जैसे लगते हैं। दीपक बहुत सीमित दायरे में प्रकाश करता है और श्रीमद् भागवतम तो जीव के अंदर जितना भी अज्ञान है, दोष है, कलमश है, उसको सद तत्काल ही दूर कर देता है, तुरंत दूर कर देता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुन करके परीक्षित महाराज 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर लिए, भगवान के धाम प्राप्त कर लिए। भागवतम की इतनी महिमा है केवल सुनने से, केवल सुन करके 7 दिन में परीक्षित महाराज भगवत धाम को प्राप्त हुए। और भगवत गीता अर्जुन सुनने के बाद फिर भी उनको युद्ध करना पड़ा, तो अंतर है। अर्जुन श्रीमद् भागवतम सुने तो सुनने के बाद भगवान ने कहा कि युद्ध करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। सुनने के बाद भी ऐसा नहीं कि अब सब कुछ हो गया, अब कुछ करना नहीं, लेकिन उनको भीषण युद्ध करना पड़ा। लेकिन परीक्षित महाराज को सुनने के बाद और कुछ नहीं करना पड़ा, केवल सुन करके ही परम गति को प्राप्त कर लिए। तो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए ही है, केवल सुनिए। आलसी व्यक्ति भी बैठकर सुन सकता है, युद्ध तो सब लोग नहीं कर सकते हैं ना। भगवत गीता पढ़ने के बाद संसार में घर गृहस्थी में युद्ध स्तर पर काम करना पड़ता है। अर्जुन को भी भगवत गीता सुनाकर भगवान कहे कि हमेशा सदा सर्वदा मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध करो, बहुत हैवी टास्क भगवान दिए, बहुत हैवी टास्क दिए कि तस्मा सर्वे सुकालेशु मां मनुस्मर युद्ध, सदा सर्वदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। लेकिन परीक्षित महाराज को कुछ नहीं करना पड़ा, केवल सुनना, सुन करके ही वो सिद्धि प्राप्त कर लिए। तो श्रीमद् भागवतम सुनना ही साधन भी है और सिद्धि भी है, साधन भी है और सिद्धि दोनों है। साधन साध्य की प्राप्ति करा देता है केवल सुनने से, सुनने मात्र से ही। भगवत गीता पढ़ने के बाद एक करें तो बहुत चीज करना पड़ता है, भगवान के मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। लेकिन भागवतम सुनने से अगर कोई सही रूप में मनोजोग से एकांतिक भाव से एकनिष्ठ होकर के निराहार होकर के धुंधकारी की तरह परीक्षित की तरह अगर सही रूप में सुन ले तो और कुछ कार्य नहीं बाकी बचता है, भक्ति के सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, उसका चित्त भगवान में संपूर्ण रूप से लग जाता है। अन्य साधन करने से तो समय लगता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को मनोयोग से सही रूप से अगर कोई सुन ले, जैसे सबसे अच्छा है जैसे धुंधकारी ने सुना था, 7 दिन बिना खाए पिए, तो 7 दिन में ही उसके लिए विमान आ गया, विमान से चला गया। तो वहां उपस्थित अन्य श्रोतागण कहे कि श्रुति भेद क्यों हो गया, हम लोग भी सुने, धुंधकारी के लिए कहीं विमान आया। सब लोग सुन ही रहे हैं तो सबको जाना चाहिए था। तो गोकर्ण जी कहे कि धुंधकारी ने जैसे सुना है उस विधि से आप लोग सुनिए। तो फिर 1 साल के बाद फिर श्रीमद् भागवतम का आयोजन हुआ, सब लोग बहुत उसी परंपरा में सुने धुंधकारी की तरह निराहार होकर के, खाएंगे तो आलस आ सकता है, खाकर सुने तो कभी कभी नींद आ जाता है ना, या बाथरूम जाना पड़ेगा, तो खाना पीना बंद करके 7 दिन धुंधकारी के परंपरा में फिर लोग सुने और सब लोग फिर भगवत धाम चले गए सुनने से केवल। तो बहुत अच्छा है, श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है। और परीक्षित महाराज भी बिना खाए पिए आमरण अनशन पर थे, जल अन्न छोड़ दिए थे, और गंगा के तट पर श्रीमद् भागवतम सुने, बल्कि बीच में सुखदेव गोस्वामी कहे कि राजन थोड़ा विश्राम कर लीजिए और जलपान कर लीजिए, तो कहे कि नहीं, मुझे शरीर की कोई भी आवश्यकताएं इस समय बाधा नहीं उपस्थित कर रही है, यद्यपि मैं क्रोध में आकर समीक मुनि के गले में सर्प डाल दिया था, वही भूख प्यास इस समय हमें महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से अमृत पान कर रहा हूं। पिबंतम तो मुखाम भोजम च्यूतम हरि कथा अमृतम, आपके मुखाम्बुज से, आपके मुख कमल से निश्रित श्रीमद् भागवतम कथा अमृत को पीकर मैं तृप्त हूं, न टॉयलेट, न पेशाब, न कुछ, न सर्दी गर्मी, न शरीर की कोई भी आवश्यकताएं मुझे बाधित नहीं कर रही हैं, न भूख लगा न प्यास। जैसे भगवान गिरिराज जी को उठाए थे तो 7 दिन 7 रात्रि गाय गोप गोपी सब लोग थे, किसी को भूख प्यास नहीं लगा, किसी को लघु शंका नहीं लगा, क्योंकि भगवान को देख रहे थे, भगवान के मुखामृत को सब लोग पी रहे थे, इसलिए न प्यास लगा न भूख लगा। 7 दिन 7 रात्रि सब लोग बहुत प्रसन्न मनसो, बहुत प्रसन्न मन से भगवान को देख रहे थे। तो वैसे ही भागवत भगवान का स्वरूप है, इसके सानिध्य में रहने से शारीरिक बाधाएं, शारीरिक आवश्यकताएं भी दूर हो जाती हैं, यहां तक कि मृत्यु भी पराजित हो जाती है, मृत्यु भी भाग जाती है। कोई अमृत पी लेता है तो अमर हो जाता है, तो वास्तविक अमृत श्रीमद् भागवतम है। अन्य अमृत तो कुछ समय के लिए आपको अमृत्व प्रदान कर सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का पान करने से मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है। रूपा जी ने किताब लिखा ना, मृत्यु की पराजय। हम मृत्यु को कैसे पराजित कर सकते हैं? ज्ञान के तलवार से, और ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवतम है। ये कवि ने लिखा है कि 2 चीज है, कलम है और तलवार है। तलवार से लोग योद्धा लोग युद्ध करते हैं, बाहुबल के बल से साम्राज्य अर्जन कर लेते हैं, लेकिन कलम के बल से, कलम रूपी तलवार का ज्यादा प्रभाव होता है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है ये कलम रूपी तलवार है, ज्ञान की तलवार है। ऐसे न्यू मुंबई में कलम बोली है, तो हमें प्रोग्राम के लिए गया था, तो मैं कहा कलम बोली क्या ना, यहाँ कलम बोलती है क्या? मैं पहले नहीं समझा, मराठी में कुछ और अर्थ होता है। तो मुझे जिज्ञासा हो कि कलम बोली बहुत अच्छा नाम है, तो मैं कहा कि कलम तो वास्तव में बोलती तो कलम ही है। प्रभुपाद जी की कलम लेखनी इतनी उर्वर थी, पूरे विश्व में सबको भक्त बना दी। तो श्रीमद् भागवतम को चुनते हैं, दो में से क्या चाहिए तुम्हें, एक कविता हम पढ़े, कलम या की तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, आ दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। ये श्रीमद् भागवतम जो है ऐसी लेखनी से लिखी गई है, ऐसी इसमें उर्वरक शक्ति है, दिल और दिमाग को जो है पवित्र कर देती है, दुरुस्त कर देती है, फिर भगवान इसमें आरूढ़ हो जाते हैं, आविष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है पढ़ने की सुनने की महिमा है, सदियों से लोग सुनते हैं। परीक्षित महाराज सुन करके साध्य प्राप्ति कर लिए। एक बार राधारमण महाराज कहते कि श्रीमद् भागवतम को साधन ऐसा साधन है और साध्य भी है, इसके द्वारा हम भक्ति के सारे अंगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां श्रीमद् भागवतम की कथा नहीं होती है वहां अन्य ग्रंथों में लोग रुचि लेते हैं, वैसे ही जैसे जहां पेड़ नहीं होते हैं तो वहां अरंडी का पेड़ ही प्रधान होता है, है ना, अरंडी जानते हैं ना। हाँ, जहां पेड़ न रूख तहां रेण प्रधान, भोजपुरी में कहावत है। जहां पेड़ नहीं है तो अरंडी का जो पौधा उसे बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा, बहुत विशाल पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत छायादार है, बहुत सुखद है। लेकिन वहां कहीं बरगद का वृक्ष वहां कोई उगा दे, विशाल रूप ले ले, तो लोग कहेंगे अरे हम लोग तो अज्ञान में थे, हम लोग अरंडी वृक्ष का ही सेवन कर रहे थे। जहां पीपल वृक्ष है, बरगद वृक्ष है, कितना बड़ा छाया होता है, ऑक्सीजन देता है, बहुत शीतलता होता है। वैसे ही जैसे हरे कृष्ण प्रभु, वैसे जैसे कोई गंगा को छोड़ करके हरिद्वार में जाकर कुआं खोदने लगे, हर की पौड़ी में जा करके और पत्थर तोड़ने लगे कुआं की खोदने, जल के लिए कुआं खोदने लगे। सूरदास जी ने एक पद लिखा है कि सूरदास परम गंग को छाड़ी पियासु, दुर्तम कूप खनावे, आ काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। मान लीजिए किसी के पास काम धेनु गाय है, उसको घर से निकालकर बकरी खरीद कर ले, तो काम धेनु तो सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वैसे श्रीमद् भागवतम की तो और करोड़ों गुना ज्यादा महिमा है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति है तो काम धेनु की महिमा नहीं जानता है, तो उसको घर से निकालकर बकरी का सेवन करता है। या जो गंगा की महिमा नहीं जानता है तो पत्थर तोड़कर कुआं खोदने का प्रयास करता है। परम गंग को छाड़ी महातम, दुर्तम कूप खनावे। तो श्रीमद् भागवतम की बहुत महिमा है, विशेष करके वैष्णवों में, साधु समाज में श्रीमद् भागवतम का ही लोग पठन पाठन, श्रवण वाचन, कीर्तन करते हैं, इसका वितरण करते हैं। इसी से जीव का परम अत्यंतिक कल्याण होता है। तो श्रीमद् भागवतम में अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जिसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा को प्रकाशित किया गया है। श्रीमद् भागवतम में ही भागवत की महिमा दी गई है, अनेकों जगह अनेकों प्रसंग में, धुंधकारी परिचित के संदर्भ में, भक्ति महारानी के प्रसंग में, भक्ति उत्पन्न हुई द्रविण देश में, उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धि कर्णाटके गता, कुचिन कुचिन महाराष्ट्र गुर्जरा जीर्णताम गता, वृंदावनम पुनः प्राप्य नबी नेवा शुरू पीढ़ी, भक्ति साउथ में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में फलीभूत हुई, बड़ी हुई थी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला, कुचिन कुचिन महाराष्ट्र और गुर्जरा जीर्णतांग बता, गुजरात में भक्ति बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वृंदावन में जाकर भक्ति नवीन हो गई, लेकिन उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। पुनः श्रीमद् भागवतम सुन करके ज्ञान वैराग्य युवक हो गए। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। श्रीमद् भागवतम सुनने से ज्ञान वैराग्य पुष्ट होता है और भक्ति की वृद्धि होती है भागवतम सुनने से। भा मतलब भक्ति, भागवत, एक भक्त कथा कह रहे थे, बता रहे थे भागवत चार, भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, त मतलब तत्व। तत्व क्या है? श्री कृष्ण है। भक्ति ज्ञान वैराग्य होता है तो कृष्ण को तत्वतः व्यक्ति जान जाता है, भागवत से श्री कृष्ण को अच्छी तरह से आदमी जान जाता है, पकड़ लेता है, कहीं हृदय में उतार लेता है। तो जब तक लोग पढ़ते नहीं है, जब तक भागवत के संपर्क में लोग नहीं आते हैं, तभी तक उनको अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण रोचक लगते हैं। जैसे कोई अमृत नहीं पिया है, कोई पका हुआ आम का फल नहीं खाया है, कच्चा खाया है, तो सोचता है कि यही आम का स्वाद है। मान लो कोई कच्चा फल ही खाया है, पका आम का फल नहीं खाया, जब पका हुआ खा लेता है तो बोलता कि आम का ये वास्तविक परिपक्व अवस्था है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, अन्य पुराण जो है प्रारंभ में ठीक हैं, ठीक लगते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान और वास्तविक कृष्ण के प्रति जो समर्पण है, जो भक्ति है, वो श्रीमद् भागवतम से ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद ज्ञान वैराग्य और भक्ति दृढ़ हो जाती है, इसलिए बार बार इसको पढ़ना चाहिए। मुहुरहो रसिका भूय भावुका, रसिक लोग इसको बार बार इस रस को पीने के लिए इच्छा करते हैं। मुहु रहो रसिका भूय भावुका, इतना रसमय है इसके जो विषय हैं, इतने सुंदर हैं और मन को, आत्मा को, इंद्रियों को इतना आनंद प्रदान करते हैं कि जीव क्लेश से, अज्ञान से, मोह से, भ्रम से, जो उसके चित्त में अनेक भ्रांतियां हैं, वो मिट जाती हैं और श्री कृष्ण में उसकी कांतिक एकनिष्ठ मति हो जाती है, कृष्ण में मति लग जाती है, कृष्ण मति रस्तो। इसलिए श्रीमद् भागवतम का ही आश्रय लेना चाहिए और इससे जीव जो है भगवान से संबंध अपना बना लेता है। तो बोलने के लिए इस श्लोक के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं कि हम तो उतना सक्षम नहीं हैं, अपने मति के अनुसार जो मैंने सुना है अन्य भक्तों से उसी को दोहराया है। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा
महाराज, बहुत सुंदर आपने कथा बतलाई। मेरा एक जिज्ञासा है, भागवतम हम सब सुनते हैं और निश्चित रूप से भक्त लोग पूरी तरह से ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी संभवतः किसी कारणों से वो बीच में निद्रा आ जाती है, या अभी आपने बताया जैसे कि पूरी तरह से यदि फास्टिंग करके सुने तो बहुत उत्तम है, लेकिन किसी कारणवश यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या फिर भी भागवतम का ऐसा महात्म्य है कि सब लोग उससे लाभान्वित होंगे?
अगर सही रूप में सुना जाए सुबह तो फास्टिंग करके ही हम लोग सुनते हैं, आप लोग खा लेते हैं 7 बजे। हमारे जुहू में क्लास के बाद ही लोग खाते हैं, आप लोग के बीच में कुछ लोग खा लेते हैं तो उनको नींद हो सकता आ सकता है, या चाहे बाथरूम जाने की जरूरत पड़ जाए। तो सुबह में कम से कम हो तो बिना खाए सुनना चाहिए और सावधानी से। हमें नहीं कहते हैं, हम भी असावधान हो जाते हैं, कभी इधर उधर मन चला जाता है। लेकिन अगर कोशिश करे आदमी जो विषय है उसको सही सही ग्रहण करने के लिए, तो बहुत लाभ होगा। हम लोग भी बैठे रहते हैं लेकिन मन कहीं और कभी चला जाता है, कभी और सोचने लगते हैं कि हाँ ये आदमी आने वाला है, एक आदमी चेक लेकर आने वाला है तो वहां जाना है। लेकिन उस सब बातों को साइड में करके उस पर आदमी फोकस करे तो ज्यादा लाभान्वित होगा आदमी। अपने चित्त को उसमें प्रयास करना चाहिए विषय वस्तु पर लाने के लिए। तो हम तो रोज सुनते ही हैं और सुबह में तो अच्छा अवसर भी है कि बिना खाए हम सुन सकते हैं, कथा के बाद प्रसाद ले सकते हैं। अच्छा अभ्यास अगर करे आदमी तो उसके जीवन में जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। कुछ नहीं तो अच्छा विषय वस्तु को समझेगा, उसको प्रस्तुत करेगा, उसको कहेगा भी तो लोग हाँ ये बहुत अच्छा समझे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, लोग बोलते हैं बहुत विद्वान हैं। कोई सुनेगा अच्छा तो वही ना अच्छा से वर्णन कर सकता है। तो जो अच्छा से सुनेगा तो बहुत अच्छा से प्रस्तुति करेगा उसका, तो प्रस्तुति करे तो बोले हाँ ये बहुत अच्छा अच्छा बता रहे हैं। हमारे गांव में गौरकिश महाराज कथा कर रहे थे एक बार, मैं लगभग 20 नहीं ज्यादा हो गया था, लगभग 30 साल पहले। एक हमारे गांव में एक व्यक्ति, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो भी आए थे, सेवा भावी थे लेकिन वो सुनने के लिए आए थे। तो वो कहे बाद में दूसरे लोगों से कह रहे थे कि ये मर्दा कहाँ की है, बड़ी बड़ी मैं कथा कहता, वो विषय वस्तु समझे कि नहीं समझे। तो भोजपुरी में दूसरे से कहे ये कहाँ के मर्दा है, बड़ी बड़ी मैं कथा कहता, माने ये मर्द कहाँ से आया है, बहुत अच्छा कथा कह रहा है, कह रहे थे। उनको बोलने के लिए शैली भी नहीं था कि ये बोलना चाहिए कि ये भक्त कहाँ से आए हैं, ये प्रभु जी कहाँ से आए हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो वो व्यक्ति आज भी हैं, शिव, उनका नाम है शिव जी, शिव शाह। किसी के यहाँ कोई प्रयोजन हो, आटा मलना हो, सब्जी का, तो आ जाते हैं, वो बहुत सेवा भाव है। कहीं प्रोग्राम हो चीज का, भंडारा हो, तो वहाँ विशेषकर आटा गुनने के लिए वो जरूर आ जाते हैं। तो कहे कि ये बहुत अच्छा कथा किए, अब कितना समझे लेकिन उनको अच्छा लगा, कान के लिए भी अच्छा लगता है श्रीमद् भागवतम कर्ण रसायनम, कान में भी कोई बीमारी है तो दूर हो जाती है। बीमारी मतलब अन्य चीज सुनने की जो आदत है, अगर ये सुनने का आदमी एक बना ले, आदत बना ले, तो कान की अन्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। माने फिल्मी सुनना, कुछ चटापटा गीत सुनना, कुछ चुटकुले सुनना, कुछ मनगढ़ंत कहानियां सुनना, कुछ वाद विवाद सुनना, बहुत चीज हम सुनते हैं ना, निंदा सुनना, किसी की प्रशंसा सुनना, तो ये सुनने लगता है आदमी, तो फिर बहुत चीज से, बहुत दोष से वो धीरे धीरे अपने को बचाने लगता है। तो सुबह में तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है कि क्लास के बाद ही प्रसाद होता है, या कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत जलपान होता है तो ठीक है, तो थोड़ा ही खाते हैं लोग, खाने वाले भी ज्यादा नहीं खाते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण
महाराज जी, श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है, संकीर्तन की महिमा बताई गई है, तो आपके मुख से कुछ नाम की महिमा के बारे में।
श्रीमद् भागवतम नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरि। तो श्रीमद् भागवतम भी इसमें भी भगवान के नाम का महिमा आया है बहुत जगह, और श्रीमद् भागवतम भगवान का ही स्वरूप है, तो इसका पाठ करना भी कीर्तन ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, बल्कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का नाम है संकीर्तन डिपार्टमेंट। प्रभुपाद जी तो बुक वितरण को भी कीर्तन कहते हैं, संकीर्तन। तो भागवत पढ़ना भी नाम संकीर्तन है, उससे भिन्न नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे थे, भागवत पाठ कर रहे थे, मतलब वो भी कीर्तन है। प्रभुपाद जी तो पुस्तक वितरण को भी संकीर्तन कहते हैं। तो भागवत पढ़ने में भी कीर्तन ही होता है, और विशेष जो कीर्तन है भगवान के नाम का, तो वो तो सार है, श्रीमद् भागवतम का सार रूप है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का भी पाठ करना वो भी नाम संकीर्तन है। प्रभुपाद जी तो यही समझाए हैं, कोई भागवत का पाठ करता है तो उसका भी फल वही मिलता है। इसलिए परीक्षित महाराज सिद्धि को प्राप्त कर लिए। मेरे समझ से जहां तक बोलता हूं, आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। कुछ और अगर इस पर बोलना है तो आप बोलिए। नाम संकीर्तन ऐसे तो मैं भी इस पर मुझे भी संदेह है कि नाम तो भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस श्लोक में तो नाम का ही ये है कि नाम के साथ साथ में भागवतम भी नाम की महिमा को ही प्रकाशित करता है, और श्रील प्रभुपाद जी भी नाम जप का ही ये किए, ज्यादा महामंत्र जपने का ही ये किए हैं। तो दोनों में से समानता है। भागवतम पढ़ना भी उसी को निरूपित करता है या उधर ही ले जाता है, इसलिए ये भी नाम संकीर्तन है। तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। भागवत पढ़कर भी उसकी रुचि नाम में ही होती है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन मतलब विशेष करके नाम जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवत पढ़ने का फल यही है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला में जिसका मन आविष्ट हो जाए। चिराधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, ये सब अपने आप में ये है। आप थोड़ा और इसको क्लियर करना है तो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी तो बृहद मृदंग कहे हैं, बृहद मृदंग। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां श्रीमद् भागवतम कथा की सरिता नहीं बहती है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवता तदाश्रया। नयत्र जगेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोको पिवई सस्यभ्यतम। तो भागवतम की बहुत महिमा है। वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहां भागवतम की कथा नहीं होती है, जहां भागवत की कथा नहीं होगी वहां नाम संकीर्तन भी नहीं होगा, वहां भगवान का पूजन भी नहीं होगा, वहां प्रसाद भी नहीं होगा। मंदिर में भागवतम कथा होता है इसलिए कीर्तन भी होता है, पूजन सब कुछ होता है। तो भागवतम जहां होता है तो वहां जरूर नाम की महिमा भी होगी, सब कुछ आ जाता है। श्रीमद् भागवतम जो है सब कुछ को अपने में रखा है, सब कुछ को अपने आप से प्रस्फुटित करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे समझ में उतना नहीं ये है, लेकिन और कोई कुछ बोलना चाहता है बोल सकते, आप बोलिए प्रभु जी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, टैगोर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। तो हम आइए विशेष रूप से महाराज का बहुत कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी आए यहाँ पर और हमें इतना सुंदर श्रीमद् भागवतम का उन्होंने अपने पर्सनल रियलाइजेशन को शेयर किया, तो आइए इनका हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और महाराज से
हम आप सभी का बहुत आभारी हैं कि मैं इतना योग्य नहीं हूं, लेकिन आप लोग इतना सम्मान दिए, तो आप लोगों के प्रति मैं बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूं। आप बुलाए, जब यद्यपि मैं कोई शास्त्र का उतना जानकार नहीं हूं, थोड़ा बहुत जो सुना था भक्तों से, वही विशेष करके महाराज से, गोरकृष्ण महाराज से, जो उसका आवृत्ति कर दिया, मेरे अंदर उतना ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, सुना हुआ उसी को रिपीट कर दिया हूं टेप रिकॉर्डर की तरह। हरे कृष्ण। टेप रिकॉर्डर कैसे, टेप रिकॉर्डर का क्या उसमें है, तो उसमें हमारा कोई नहीं, कुछ महाराज श्री से सुना, कुछ गौर कृष्ण महाराज से, कुछ अन्य भक्तों से, उसी को मैंने बोलने का प्रयास किया है, और इसमें जो गलती होगा तो उसको, उसके लिए क्षमा करिएगा। हमारे भोजपुरी में जब कोई कहानी